रौनक उस वक्त आहान को पीट पीट कर उसका कीमा बना देना चाहती थी, इसीलिए वो फटाफट अपने हाथ आहान की तरफ चला रही थी। तभी अचानक आहान ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए, क्योंकि रौनक बुरी तरह से बेड पर उछल रही थी और उसे मारने के लिए दौड़ रही थी। ये रौनक के लिए ठीक नहीं था। आहान ने डॉक्टर से सारी डिटेल्स ले ली थी कि इस स्थिति में उसे रौनक का किस तरह से ख्याल रखना है। अचानक उसने रौनक के हाथ कसकर पकड़ लिए थे और एक बार फिर से आहान ने अपने होंठ उसके होठों पर रखकर उसे शांत करने लगा। अब तो रौनक छटपटाने लगी। फिर आहान किस करने के बाद एक पल के लिए उसके पास से हटा और मदहोशी भरी आवाज में बोला, अगर तुमने चिल्लाना और शोर मचाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें ऐसे ही किस पर किस करता रहूंगा। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। आहान की बात सुनकर रौनक ने तुरंत अपने होठों पर हाथ रख लिए थे और अपनी गोल गोल बड़ी आंखों से दोनों तरफ गर्दन हिला दी, मानो वो उसे कहना चाह रही हो कि वो अब कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन तुम मुझे किस करने के बारे में सोचना भी मत। तब आहान मन में रौनक की इस हरकत को देखकर हंसने लगा और सोचने लगा, यार ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, इससे तो मेरी बंदरिया को बहुत आसानी से शांत कराया जा सकता था। वेल, तब आहान ने रौनक का हाथ थामकर उसे बेड पर बिठा लिया और उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया, क्योंकि इस वक्त रौनक की सांस पूरी तरह से फूली हुई थी, इसलिए वो उसे पानी देकर शांत कर रहा था। एक पल के लिए रौनक ने सोचा, अगर मैं अपने मुंह पर से हाथ हटा लूंगी कहीं ये छछुंदर मुझे फिर से किसना कर दे, इसलिए उसने पानी लेने से मना कर दिया। लेकिन आहान उसकी मन की बात समझ गया और वो होले से मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा, तुम पानी पी लो। ये बोलकर उसने पानी का ग्लास उसे थमा दिया था। तब रौनक ने दो तीन घूंट पानी पिया और फिर ग्लास वापस आहान को दे दिया। तभी आहान बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस वक्त आहान रौनक को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन रौनक तुरंत बेड से उठ खड़ी हुई और वहां से निकलते हुए बोली, देखो मुझे तुम्हारे जैसे छछुंदर की कोई बात नहीं सुननी है और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, समझे तुम, और मुझसे दूर रहना, और अगर तुमने मुझे किस करने की कोशिश की तो मैं सीधा सीधा अरमान भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, समझे तुम। ये बोलकर बिना आहान की कोई बात सुने रौनक फटाक से उस कमरे से इतनी तेजी से बाहर निकली मानो उसके पीछे जंगली कुत्ते पड़ गए हों। अब तो आहान अपना सर पकड़कर रह गया था और पीछे से तेजी से चिल्लाया, अच्छा अच्छा मेरी बात मत सुनो, जरा धीरे धीरे चलो, क्योंकि अब आहान को रौनक की फिक्र हो रही थी कि अगर रौनक इसी तरह से उछल कूद करती रही तो कहीं उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। जब से आहान को ये पता चला था कि रौनक उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, उसे रौनक से एक अलग तरह का अटैचमेंट सा हो गया था, इसीलिए वो रौनक को हर हाल में बिल्कुल ठीक ठाक देखना चाहता था। वहीं दूसरी ओर अब नानी माँ भी होश में आ चुकी थी। रौनक सीधा नानी माँ के कमरे में गई थी। वहां जाकर उसे पता चला कि बाकी सब लोग पहले ही सिंघानिया मेंशन चले गए हैं। एंजल वहीं पर रुकी हुई थी। तब रौनक ने एंजल से कहा कि हम नानी माँ को साथ में लेकर घर चलते हैं, क्योंकि वहां से निकलने के बाद रौनक ने सीधा रश्मि को फोन किया था। तब रश्मि ने रौनक से कहा कि वो नानी माँ को लेकर घर आ जाए। अब जल्दी ही आहान भी नानी माँ के कमरे में आ गया था। रौनक उसे घूर घूर कर देख रही थी, लेकिन आहान की आंखों में आज रौनक के लिए किसी तरह का कोई मजाक नहीं था, वो तो बस उसे बड़े ही प्यार से निहारता जा रहा था। तभी नानी माँ धीमी आवाज में बोली, बेटा तुम मुझे घर लेकर चलो, मुझे आस्था की फिक्र हो रही है, मुझे आस्था से मिलना है। क्योंकि अभी तक आस्था नानी माँ से नहीं मिली थी। अरमान से नफरत के चक्कर में आस्था के दिमाग से नानी माँ का ख्याल तो बिल्कुल ही निकल गया था। फिलहाल उसे ये भी नहीं पता था कि नानी माँ को होश आ गया है। फिलहाल जल्दी ही आहान ने कार तैयार की और रौनक, एंजल और साथ ही नानी माँ को लेकर वो सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। मेंशन में उस वक्त वंशिका आस्था के साथ थी। वंशिका और आस्था इस वक्त दोनों ही बात नहीं कर रही थी, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और वो खामोशी किस वजह से थी ये बात आस्था और वंशिका दोनों ही जानती थी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त अविनाश अबीर के विला में था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो सीधा अबीर के साथ उसके विला में चला गया था, क्योंकि अविनाश जानता था अगर वो सिंघानिया मेंशन में गया और उसने अरमान और आस्था को साथ देखा तो शायद वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब अविनाश ने अबीर से कहा कि राजवीर और अरमान के बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है, हमें सबसे पहले इस बारे में पता लगाना होगा, और वंशिका उसे क्यों मारना चाहती थी, कहीं ना कहीं उन दोनों को उस मामले के बारे में इन्वेस्टिगेट करना था, और ताकि वक्त रहते वो अब राजवीर जिंदल पर पूरी तरह से शिकंजा कर सकें, क्योंकि राजवीर जिंदल को वो किसी भी कीमत पर आसानी से जाने नहीं दे सकते थे। वेल, जल्दी ही अबीर ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे दिया कि वो अरमान सिंघानिया के जन्म से लेकर अब तक की पूरी जन्म कुंडली निकाले, साथ ही साथ राजवीर जिंदल की भी हिस्ट्री निकाले। इसके लिए उसने काफी बड़ी मोटी रकम खर्च की थी। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही वे लोग नानी माँ को लेकर अब घर पहुंच चुके थे, और जैसे ही वे घर में दाखिल हुए नानी माँ ने देखा कि आज सिंघानिया मेंशन में अजीब सा सन्नाटा था, अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो नानी माँ को खटकने लगी। घर पहुंचते ही नानी माँ तुरंत आस्था से मिलने की जिद करने लगी, लेकिन तभी अचानक दादाजी नानी माँ के सामने आए और उन्होंने नानी माँ से अकेले बात करने की विनती की। अब सब लोग वहां से चले गए थे, तब दादाजी ने अपने शब्दों में नानी माँ से सब कुछ बताना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ उनसे माफी भी मांगी कि वे उनके बीमार स्थिति में उनसे इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनसे मदद मांग रहे हैं। अब तो नानी माँ जैसे जैसे दादाजी की बात सुन रही थीं, उनकी आंखें दर्द से भरती जा रही थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वे किस तरह का रिएक्ट करें। दादाजी की सारी बातें सुनने के बाद आखिर में नानी माँ ने सिर्फ इतना ही बोला, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मैं कभी भी गोरी को अरमान से अलग नहीं होने दूंगी। अब आखिर में नानी माँ की ये बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट थी। लेकिन ठीक उसी वक्त रश्मि और आकाश भी वहां आए और उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, और उसके लिए हमारे पास एक आइडिया है। वहां जाकर रश्मि ने अपना आइडिया दादाजी और नानी माँ के साथ शेयर कर दिया था। तब नानी माँ चहकते हुए बोली, अरे वाह बेटा, तुम्हारा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, बहुत मजा आएगा। अब तो नानी माँ की ये बात सुनकर रश्मि ने भी चहकते हुए नानी माँ को गले से लगा लिया था। और तब नानी माँ ने रश्मि से कहा, अब तुम एक काम करो, आस्था के पास जाओ और उसे मेरे बारे में बताओ। अब रश्मि मुस्कुराते हुए जल्दी ही वहां से बाहर निकल गई थी। तब नानी माँ अपना सर पकड़कर सीधा हाल में बैठ गईं। नानी माँ तो हमारी एक्टिंग बास पहले ही थी और अब शायद नानी माँ को अपने असली स्किल यानी अपनी एक्टिंग का असली हुनर दिखाने का वक्त आ गया था। जल्दी ही अब वंशिका और आस्था के कमरे के बाहर जाकर रश्मि ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। लेकिन आस्था बोली, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, जो कोई भी दरवाजे पर है वो वापस चला जाए। तब रश्मि आस्था की आवाज़ सुनकर बोली, आस्था मैं हूँ, तुम्हारी रश्मि दीदी, प्लीज आस्था एक बार दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है, प्लीज आस्था।
अब रश्मि को दरवाजे पर देखकर आस्था उठ खड़ी हुई। पहले तो वो दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी, इसीलिए दरवाजे के अंदर से ही वो जवाब देते हुए बोली, देखिए अगर आप यहाँ मिस्टर सिंघानिया के बारे में मुझे कोई बात करने के लिए आई हैं तो आप अभी और इसी वक्त यहाँ से वापस चली जाएं, क्योंकि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। तब रश्मि ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और सोचने लगी, ये लड़की बिना दरवाजा खोले ही अपने मन में ही सारी बातें बनाई जा रही है। तब रश्मि अपनी सोच पर कंट्रोल करके बोली, अरे आस्था, मैं यहाँ तुमसे अरमान के बारे में कोई बात करने नहीं आई हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। ये बोलकर रश्मि ने थोड़ा सा तेज आवाज में आस्था को दरवाजा खोलने के लिए कहा था। तब आस्था ने वंशिका की ओर देखा, वंशिका आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया था। तब रश्मि जल्दी से आस्था के पास गई और बोली, तुम जानती हो मैं तुम्हें कब से कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। अब आस्था चौंकते हुए बोली, क्या बात है रश्मि दीदी, आप क्या बताना चाहती हैं? तब रश्मि हकलाकर जल्दी से बोली, नानी माँ, वो नानी माँ। अब नानी माँ का नाम आने पर आस्था तुरंत खड़ी होकर फिक्र जताते हुए बोली, नानी माँ क्या, मेरी नानी माँ ठीक तो है ना? हाँ नानी माँ तो हॉस्पिटल में है ना, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। इन सब ड्रामा के बीच में तो नानी माँ को भूल ही गई, ओ माय गॉड कान्हा जी ये क्या हो गया मुझे। ये बोलकर आस्था अब थोड़ा सा पैनिक होने लगी, लेकिन रश्मि उसे तुरंत शांत करते हुए बोली, तुम्हें नानी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नानी माँ ऑलरेडी इस घर में मौजूद है और नानी माँ को होश आ गया है और नीचे हॉल में है और तुम्हें बुला रही हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना, उसके चेहरे पर आंसुओं के साथ साथ एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसके चेहरे के भाव मिले जुले से हो गए थे और बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से वो नीचे जाकर नानी माँ से मिल लेना चाहती थी और बाहर की तरफ भागी। रश्मि ने पीछे से उसे धीरे से चलने के लिए आवाज़ लगाती रही। दूसरी ओर रौनक जल्दी अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि आज जिस तरह से आहान में उसे किस किया था वो सारी बातें सोचने लगी थी। रौनक सोचने लगी, आखिरकार छछुंदर को हो क्या गया है, जब देखो बात बात पर मुझे किस किए जा रहा है। मुझे छछुंदर से बचकर रहना होगा, जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर मैं इसी तरह से इसके करीब रही तो कहीं मैं खुद को ही ना खो दूं। कहीं ना कहीं रौनक भी आहान को पसंद करती है, लेकिन अभी भी उसके मन में यही बात थी कि आहान को ये ना लगे कि रौनक खुद को उस पर थोप रही है, इसीलिए वो इस तरह का कोई मौका उसे नहीं देना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर आस्था तुरंत दौड़कर नीचे आ गई थी। नीचे आकर जैसे ही उसने हॉल में बैठी हुई नानी माँ को देखा, वो तुरंत जाकर उनसे खुशी से लिपट गई थी और रोने लगी। और उसे रोते हुए दो आंखों से घूर कर देख रहा था वो था अरमान सिंघानिया, जिसे भी ये खबर मिल चुकी थी कि नानी माँ को होश आ गया है और उस वक्त वो उनसे मिलने के लिए ही आ रहा था। लेकिन आस्था को नानी माँ के साथ देखकर वो तुरंत पीछे हट गया था और आस्था को रोते हुए देखने लगा। उसे दर्द में देखकर उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था, क्योंकि आस्था को रोते हुए वो किसी भी कीमत पर नहीं देख सकता था। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। TC